समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।
नमस्कार, पब्लिक स्पीक के साथ मैं हूं चंद्रिका जोशी। आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम में। इंसान के लिए उसका स्वास्थ्य निस्संदेह उसकी बहुत बड़ी पूंजी है, लेकिन इस स्वास्थ्य के लिए हमें सर्वांगीण स्वास्थ्य की जानकारी होना भी बहुत जरूरी है। थैलेसीमिया भी एक ऐसा ही रोग है जिसके बारे में हमें जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर साल इस जागरूकता के लिए हर साल 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस वर्ल्ड थैलेसीमिया डे के रूप में मनाया जाता है। ये एक ऐसी गंभीर बीमारी है जिसका नाम सुनने से डर तो लगता है, भयभीत होते हैं लोग, लेकिन समय पर सही उपचार के बाद इस बीमारी से जो लोग ग्रस्त हैं वो एक सामान्य तौर पर अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। ये एक अनुवांशिकी रोग है, लेकिन जितना घातक है उतना ही इसके बारे में जागरूकता का अभाव भी देखा गया है। तो आज के इस कार्यक्रम में हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन इसके लक्षण क्या हैं, थैलेसीमिया का कारण क्या है, इसका उपचार कैसे हो सकता है, क्या परहेज हो सकता है, बचाव क्या है, सावधानियां क्या क्या हैं, विश्वभर में शोध अनुसंधान लगातार किस तरह से चल रहे हैं, ऐसी अगर कोई भी जानकारी आप चाहें या कोई आपका इसमें कोई जिज्ञासा हो तो हमें जरूर फोन करें। हमने आज अपने कार्यक्रम में दो विशेषज्ञ मेहमानों को आमंत्रित किया है। हमारा विषय है थैलेसीमिया से बचाव और इसके प्रति जागरूकता, और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में इस समय उपस्थित हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से डॉक्टर तुलिका सेठ और राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल से डॉक्टर आलोक हेमल। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है।
नमस्कार।
और आप फोन लाइन खुल चुकी हैं, आपके फोन का इंतजार है। हमारे दो नंबर हैं जिनसे आप सीधे हमसे बात कर सकते हैं। एक नंबर है 0112331444, दूसरा टोल फ्री नंबर है 1800115767। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। इस बीच सबसे पहले श्रोता हमारे साथ रायबरेली उत्तर प्रदेश से जुड़ चुके हैं, रमाशंकर वाजपेयी। वाजपेयी जी बोलिए।
नमस्कार मैडम।
नमस्कार।
ये मैं पूछना चाहता जो थैलेसीमिया शब्द है तो इसके द्वारा कौन सा रोग और इसका क्या निदान है, शरीर पे क्या इफेक्ट पड़ता है और इसका निदान क्या?
अच्छा, ये रोग एक्चुअली है क्या रोग?
तो ये जो रोग है ये आपकी खून बनाने की जो अंश है उसमें एक म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन मतलब जो जीन है उसमें एक खराबी है। थैलेसीमिया कैरियर्स होते हैं जिनमें एक जो हीमोग्लोबिन जीन है उसमें खराबी है, दूसरी हीमोग्लोबिन जीन नॉर्मल है। तो थैलेसीमिया कैरियर्स नॉर्मल इंसान होते हैं, उनका हीमोग्लोबिन नॉर्मल से थोड़ा कम होता है, उनमें कोई लक्षण नहीं है। पर अगर दो थैलेसीमिया कैरियर्स की शादी होती है तो उनमें 25% चांस से उनके एक बच्चे को थैलेसीमिया मेजर हो। तो आमतौर पे जब हम थैलेसीमिया मरीज के बारे में बात करते हैं तो थैलेसीमिया मेजर उस बच्चे को होता है। ये जो बीमारी है जब बच्चा 3 से 6 महीने का होता है उस टाइम पे पता चलता है, क्योंकि बच्चे को खून की कमी होती है और उसको बार बार खून चढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है, और थोड़े दिन के बाद बच्चे का लिवर तिल्ली ये भी बढ़ जाते हैं, बच्चा कमजोर रहता है।
ऐसा भी हो सकता है कि बच्चा बड़ा हो जाए और तब भी उसको ये ना पता हो कि, जैसे आपने कहा कि दो थैलेसीमिया कैरियर अगर शादी होती है तो और प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्या ऐसा होता है कि बड़े होने तक भी ये पता ना लगे?
सही, बड़े होने तक थैलेसीमिया मेजर का ना पता चलना ये नहीं होता है। आमतौर पे बच्चा 6 महीने से 2 साल तक का होता है जब थैलेसीमिया मेजर बच्चे डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। अगर वो नहीं पहुंच पाते हैं तो कई बार इन बच्चों की मृत्यु भी हो सकती है।
नहीं, पर पता कैसे चलता है कि ये बच्चा इस रोग से पीड़ित है? क्या उसके लक्षण क्या?
उसको बार बार उसको बुखार जैसा लगता है, उसका खून कम हो जाता है, उसका तिल्ली लिवर बढ़ जाता है, और खून का इतना ज्यादा अभाव होता है कि उसको खून चढ़ाना आवश्यक होता है। तो ये बचपन में ही पता चल जाता है। थैलेसीमिया कैरियर्स जो हैं ये बीमारी नहीं है, तो वो तो नॉर्मल रहेंगे और उनको हो सकता है कभी भी ना पता चले कि वो थैलेसीमिया कैरियर है जब तक वो जांच ना करें, तो वो अलग है,
वो उनको अनुवांशिक जो मिली है।
हाँ, बट वो नॉर्मल इंसान होते हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब दो थैलेसीमिया कैरियर्स की शादी होती है एंड तब उनके बच्चे में थैलेसीमिया मेजर होने का चांस है। बट ऐसा नहीं है कि दो थैलेसीमिया कैरियर्स शादी नहीं कर सकते हैं। अगर वो शादी करते हैं तो 75% चांस है कि नॉर्मल भी बच्चा हो, बट हर प्रेगनेंसी में 25% रिस्क है कि उनको थैलेसीमिया मेजर बच्चा पैदा हो।
तो इसमें क्या सावधानियां बरतनी होंगी हम पूछेंगे, लेकिन हमारे साथ एक श्रोता है अभी लुधियाना पंजाब से, कपिल गोयल। कपिल जी पूछिए अपना सवाल।
मैम गुड इवनिंग।
गुड इवनिंग
मैम। मेरा बेटा वैभव गोयल है, उसका अपना थैलेसीमिया मेजर है उसको।
अच्छा,
तो हमने 2014 में एक फरवरी में इसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी करवाया था।
अच्छा,
तो ड्यूरिंग द ट्रांसप्लांट हमारा 2 मंथ्स तो जो केस है वो सक्सेसफुल रहा, बट आफ्टर 2 मंथ्स उसको ग्राफ्ट रिजेक्शन हो गई। उसमें कैमरिज्म डाउन आना शुरू हुआ, हमारा जो दात्री के थ्रू मैच हुआ था, जो मैच था ना
दात्री से,
तो उसके बाद हमारा ग्राफ्ट रिजेक्शन हो गया, तो वही सेम पोजिशन में बच्चा आ गया जो पहले था ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वाला प्रॉब्लम।
वो कितने साल का था जब आपने ट्रांसप्लांट कराया था?
ही वॉज 3 ईयर्स ओल्ड।
ओके, सी आपकी कोई गलती नहीं है, ये अनफॉर्चुनेटली ब्लड जब बार बार चढ़ता है और जब हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं तो क्योंकि बोन मैरो भी एक तरह से ब्लड होता है, तो कभी कभी बच्चों में ग्राफ्ट रिजेक्शन हो जाता है एंड आपका ट्रांसप्लांट के बाद भी आपको ब्लड चढ़ाने की आवश्यकता होती है। तो ऐसे परिस्थिति में दोबारा से ट्रांसप्लांट किया जा सकता है एंड अब गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ कोल इंडिया एक स्कीम बना है जिसमें वो हर साल 100 पेशेंट्स के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्योंकि बच्चा अभी आपका छोटा है तो उसको इस स्कीम में आप अप्लाई कर सकते हैं एंड नेक्स्ट टाइम ट्रांसप्लांट में थोड़ी सी और दवाइयां वगैरह देके किया जा सकता है। बट जैसे आपको हमने बताया ये करीब 10-15% रिस्क रहता है कि रिजेक्शन हो जाए एंड रिजेक्शन कभी कभी अगर बहुत जल्दी पता चल जाता है तो थोड़ी दवाइयों का एडजस्टमेंट करके रोका जा सकता है, बट हमेशा नहीं होता है। इवन हमारे यहां भी और वेल्लोर में भी कई जगह पेशेंट्स हैं जिनका एक बार ट्रांसप्लांट से सफलता नहीं हुई, दूसरी बार ट्रांसप्लांट से फायदा हुआ है।
अगले श्रोता हमारे साथ हैं दिल्ली से ब्रह्मदत्त। हेलो।
हेलो मैडम जी, नमस्ते।
नमस्ते
जी मैम, विशेषज्ञों को प्रणाम। मेरा नाम ब्रह्मदत्त है, मंगोलपुरी दिल्ली से निवेदन रूपी 3 प्रश्न कर रहा हूँ
जी।
मेरा पहला प्रश्न है, क्या हीमोफीलिया की तरह जो हमारा ये थैलेसीमिया है उसके भी प्रकार होते हैं ABC जैसे हीमोफीलिया होता है? और क्या सर जी जो हमारे एनीमिया होता है और थैलेसीमिया और हीमोफीलिया में कोई अंतर संबंध होता है? अंतिम प्रश्न है सर जी, जब हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट या अस्थि मज्जा का प्रत्यारोपण सफलतापूर्वक करवा लेते हैं तो क्या थैलेसीमिया रोग से मुक्ति मिल जाती है? धन्यवाद
डॉक्टर आलोक।
फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पूछा कि थैलेसीमिया और हीमोफीलिया, थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रोग है और इसको बच्चों में होता है और इसके साथ पीले पड़ जाते हैं बच्चे और खून की कमी हो जाती है। और हीमोफीलिया में ये कोगुलेशन डिसऑर्डर होता है, इसमें आपके ब्लीडिंग होती है और कई जगह से ब्लीडिंग हो सकती है, इसमें APTT प्रोलॉन्ग हो जाता है, उस बेसिस पे डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो और कभी कभी न्यू म्यूटेशन के कारण भी हीमोफीलिया हो सकता है। तो दोनों अलग अलग बीमारी है और दोनों का अलग अलग इलाज संभव है।
थैलेसीमिया कितने प्रकार का होता है?
हाँ, आपने पूछा थैलेसीमिया कितने प्रकार के होते हैं। थैलेसीमिया हम 3 प्रकार के कह सकते हैं, एक थैलेसीमिया ट्रेट या थैलेसीमिया माइनर, थैलेसीमिया इंटरमीडिया, थैलेसीमिया मेजर। थैलेसीमिया ट्रेट माइनर ये कैरियर रूप से होता है और इसमें कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। थैलेसीमिया इंटरमीडिया यूजुअली दो साल के बाद अपियर होता है और दो से तीन साल के ऊपर। इसमें थोड़ा सा लिवर स्प्लीन इनलार्ज हो सकता है, इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत हो सकती है और इसमें आपको कीलेशन थेरेपी भी आयरन ओवरलोड के लिए देना पड़ सकती है। तीसरा प्रकार थैलेसीमिया मेजर, बहुत अच्छी तरह से डॉक्टर तुलका सेठ ने बताया कि ये जल्दी होता है, 6 मंथ से 2 ईयर्स के बीच यूजली अपियर हो जाता है। इसमें सीवियर एनीमिया होती है और हेपेटोस्पिनोमेगैली, बोन इन्वॉल्वमेंट एंड लेटर ऑन आपको डिले प्यूबर्टी, शॉर्ट स्टेचर एक्सेट्रा हो सकता है। तो इसमें आपको रेगुलर ट्रांसफ्यूजन और कीलेशन थेरेपी की जरूरत होती है।
जी, हमारे जिन श्रोताओं ने अभी स्टेशन ट्यून किया है उन्हें बता दें कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। हम आज थैलेसीमिया से बचाव और इसके प्रति जागरूकता विषय पर चर्चा कर रहे हैं। आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से डॉक्टर तुलिका सेठ और राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल से डॉक्टर आलोक हेमल। दो नंबर हैं हमारे, हमसे बातचीत करना चाहते हैं तो एक टोल फ्री नंबर है 1800-115767, दूसरा नंबर है 0112331-4444। आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, कोई भी सवाल पूछ सकते हैं विषय से संबंधित। ये कार्यक्रम दूरदर्शन की डीटीएच सेवा पर भी उपलब्ध है। अगले श्रोता हैं फरीदाबाद से मनोज कुमार जी। मनोज जी बोलिए।
नमस्कार जी।
नमस्कार
मैडम, ये ना हमारा मेरा भांजा है, उसके 30 साल एज है तो उसको थायराइड है, तो अब डॉक्टर को चेक कराया तो वो कहते जी इनका ब्लड नहीं बन रहा, इनको थैलेसीमिया हो सकता है, ऐसा भी होता है
डॉक्टर?
थायराइड के कारण भी हीमोग्लोबिन कम हो सकता है। हीमोग्लोबिन कम होने का सबसे कॉमन जो हमारे देश में कारण है वो है आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। तो आयरन का भी जांच किया है आपने?
नहीं है इस वक्त। आयरन की जांच करनी चाहिए इनको?
हाँ, आयरन की जांच अवश्य करनी चाहिए। एंड अगर ये भी नहीं है तो फिर थैलेसीमिया के लिए टेस्ट किया जा सकता है। अगर थैलेसीमिया होगा इस उम्र में तो प्रोबेबली वो थैलेसीमिया माइनर बोल रहे हैं, क्योंकि वो थैलेसीमिया मेजर या इंटरमीडिएट अनलाइकली लग रहा है।
योगेश है हमारे अगले श्रोता जलगांव महाराष्ट्र से। योगेश जी।
नमस्ते मैडम, मैं योगेश जी महाराष्ट्र जलगांव से बोल रहा हूँ।
जी जी बोलिए।
मैडम मेरा ये सवाल था कि थैलेसीमिया माइनर, ये हम इसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं?
इसमें आपको टेस्ट कराना चाहिए, अगर आपके फैमिली में किसी को है या एक्सटेंडेड फैमिली में है तो टेस्ट कराना चाहिए। और दूसरा क्या है कि आप अगर कभी जो स्कूल गोइंग हाई स्कूल मेरे अनुसार 10th क्लास में बच्चे हैं या प्रेगनेंसी कर रहे हैं या करने वाले हैं, उनको टेस्ट कराना चाहिए करियर के लिए। और इसमें सिम्टम्स बहुत ज्यादा नहीं हो सकते, कभी कभी माइल्ड एनीमिया हो सकता है बट बहुत सारे सिम्टम्स नहीं पाए जाते हैं, तो कैरियर स्टेट में आपको टेस्ट कराना चाहिए। बहुत सारे देशों में ये कॉमन टेस्ट है कि आपको मैंडेटरी है, आवश्यक है आपको ये टेस्ट कराना चाहिए, लाइक रेड सेल इंडाइसिस मतलब आरबीसी का एमसीबी एमसीएच देखना, उसके बाद एचपीएलसी हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी और दूसरी जगह नेस्ट्रॉफ टेस्ट भी करते हैं। तो इस तरीके से ये टेस्ट करना चाहिए, टेस्ट के द्वारा हम इसका पता लगा सकते हैं।
अगर साधारण शब्दों में जैसे हम किसी को बताना चाहें अपने श्रोताओं को कि थैलेसीमिया एक्चुअली क्या है, मतलब इसमें क्या चीज है जो शरीर में ये रोग होता है?
तो अगर थैलेसीमिया माइनर की बात कर रहे हैं तो पहले तो ये सोचिए कि ये एक रोग नहीं है। ये पुराने जमाने में जब हम लोग जंगलों में घूमते थे तो ये एक म्यूटेशन था आपके ब्लड में जो आपको मलेरिया से बचाता था। तो ये रोग ये नहीं है, बट क्योंकि अब ओवरक्राउडिंग है, पास पास लोग रहने लगे हैं तो चांस है कि दो थैलेसीमिया माइनर लोगों की शादी हो। तो इसमें कोई स्टिग्मा नहीं होना चाहिए कि आप में कोई डिफेक्ट है, ये डिफेक्ट नहीं है, बट ये आपको हम जानकारी दे रहे हैं ताकि आप अपने परिवार के आगे फ्यूचर के लिए ध्यान रखें, क्योंकि जब दो थैलेसीमिया माइनर की शादी होती है तो 25% रिस्क है कि थैलेसीमिया मेजर बच्चा हो, 75% चांस है कि बच्चा नॉर्मल हो, ठीक है। सो ये बार बार मैं कह रही हूँ क्योंकि इसमें किसी को स्टिग्मा नहीं करना चाहिए कि अरे आप थैलेसीमिया कैरियर हो, आप में कोई डिफेक्ट है, ऐसा नहीं सोचना है।
और इस रोग में डॉक्टर आलोक क्या होता है, मतलब जैसे हमारे जो रेड ब्लड जो बनता है मतलब उसमें क्या प्रॉब्लम आती है?
एक्चुअली क्या होता है, ये सिंगल जीन डिफेक्ट के कारण जो रेड सेल होते हैं उनका डिस्ट्रक्शन टूटना हो जाता है, जिसको हीमोलिसिस कहते हैं। उसके कारण सीवियर पैलर मतलब एनीमिया होना, टायर्डनेस,
डिजनेस,
और थकान होना, और सांस में दिक्कत होना, कभी कभी हार्ट फेलियर भी हो जाता है सीवियर।
यानी ये कह सकते हैं कि जो हमारे रक्त कोशिकाएं हैं लाल रंग की वो बननी कम हो जाती है,
टूटती हैं
ज्यादा, इसको हीमोलिटिक एनीमिया बोलते हैं। जो इन थैलेसीमिया मेजर या इंटरमीडिएट, बट थैलेसीमिया माइनर में नहीं होता,
ऐसा नहीं होता। तो जो एक हमारा ब्लड कोशिका है, जो लाल रक्त कोशिका है, वो कितने दिन तक अपना काम करती है और कब वो टूटना शुरू?
सो नॉर्मल जो रेड ब्लड सेल्स है उनका लाइफ स्पैन होता है 120 दिन, और उस समय वो अपना पूरा काम करती है। हीमोलिटिक एनीमिया जैसे थैलेसीमिया में उनकी जो जीवन की आयु कम हो जाती है, इसलिए बॉडी को बार बार ब्लड बनाना पड़ता है, और फिर भी वो उतना ब्लड नहीं बना पाता है, और जो ब्लड बनाता है वो कम समय रहता है और जल्दी नष्ट हो जाता है।
तो ये एनेमिक होने का कारण ये है?
बिल्कुल।
और इसमें फिर डॉक्टर आलोक हीमोग्लोबिन भी कम हो जाता होगा?
बिल्कुल, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, इसलिए बार बार आपको रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन लेना पड़ता है लाइक थैलेसीमिया मेजर में। और हमारा जैसे बच्चे हमारे यहाँ ट्रांसफ्यूजन कराने के लिए आते हैं तो हम उनका प्री हीमोग्लोबिन मतलब ट्रांसफ्यूजन के पहले प्री ट्रांसफ्यूजन हीमोग्लोबिन हम 9 से 10 के बीच रखते हैं, और उसके बाद ब्लड चढ़ाते हैं। और कभी कभी बच्चे का हीमोग्लोबिन 6-7 होता है तो उनको हम एडवाइस करते हैं कि आपको 9 से 10 के बीच रखते हैं प्री ट्रांसफ्यूजन, और नहीं तो फिर इसके कारण शॉर्ट स्टेज मतलब छोटापन रह जाना, हाइट में
हाइट पूरी नहीं होना,
एंडोक्राइन डिफेक्ट आ जाते हैं, डिले प्यूबर्टी हो सकती है,
पूरा विकास नहीं हो रहा है।
जी हाँ, तो बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं, तो इसके लिए बहुत
तो यानी कि हीमोग्लोबिन अगर सही नहीं है तो एक इंडिकेशन, एक शक जाता है इस पर,
बिल्कुल
कि जांच करा लेनी चाहिए।
जी हाँ
जी। दिल्ली से हमारे अगले श्रोता है KL नागपाल। नागपाल जी
हेलो।
हेलो बोलिए।
नमस्कार मैम।
नमस्कार।
मैं ये जानना चाह रहा था कि ये जो थैलेसीमिया का जो ट्रीटमेंट कराते रहने से ब्लड देते हैं बार बार, उसमें शरीर में मैंने सुना कि आयरन की मात्रा अधिक अधिक हो जाती है।
जी जी।
तो आयरन की मात्रा अधिक होने का क्या कारण है?
हाँ,
और इसका भी ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, मतलब आयरन की मात्रा से कैसे?
हाँ हाँ, मैं समझ गई। डॉक्टर साहब ये कहना चाह रहे हैं कि जब आयरन, एक तो ये पूछ रहे हैं कि आयरन बढ़ जाता है बार बार ट्रांसप्लांट कराने से, और दूसरा जब आयरन बॉडी में ज्यादा हो जाएगा तो फिर उसको कम कैसे किया जाए?
जब आप पैक्ड सेल देंगे तो उसमें आयरन बढ़ जाता है, तो उसके लाइक लिवर और हार्ट और डिफरेंट ऑर्गन में एंडोक्राइन डिफरेंट ऑर्गन में जमा हो जाता है अगर बहुत ज्यादा देंगे, तो इसके लिए कीलेशन थेरेपी देना पड़ती है, और इसके लिए लाइक हमारे यहाँ दवाएं डीफेरेक्सॉक्स, डीफेरिप्रॉन, डेसफेरोक्सिमिन, ये दवाएं होती है, तो ये दवाएं हम लोग देते हैं। ये गवर्नमेंट सेंटर लाइक राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, आदर्श हॉस्पिटल, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। आप इसमें आपको रेगुलर फॉलोअप करना पड़ेगा, और इसके लिए रेगुलर हम लोग फेरिटिन लेवल करवाते हैं, तो उसकी उससे हम यूजुअली हम 500 के करीब फेरिटिन लेवल रखते हैं। अगर इससे ज्यादा होता है, अगर 1000 के करीब पहुंचता है, तो इसके लिए हम कीलेशन एजेंट शुरू कर देते हैं।
ये जो थेरेपी आप बता रहे हैं, किलो थेरेपी जो कही है, ये वो आयरन को हम डिस्ट्रॉय करते हैं, बॉडी से निकालते हैं उसको।
यस हाँ जी,
ठीक है। तो ये दिल्ली में तो जैसे आपने बताया RML है और एम्स में है, ये तो राज्यों में भी इस तरह की सुविधाएं हैं?
सो गवर्नमेंट की तरफ से एक नेशनल थैलेसीमिया कंट्रोल प्रोग्राम बनाया है, एंड अभी थोड़े दिन में गवर्नमेंट की एक नेशनल थैलेसीमिया पॉलिसी भी आएगी, उसमें नेशनल थैलेसीमिया एंड सिकल सेल पॉलिसी करके आएगा। तो सभी स्टेट्स में फ्री ब्लड ब्लड बैंक की लाइसेंसिंग, फ्री मेडिसिन, एंड जैसे डॉक्टर हेमल ने बताया आयरन मॉनिटरिंग के लिए ब्लड टेस्ट भी होते हैं, प्लस कभी कभी लिवर एंड हार्ट में आयरन डिपॉजिट हो जाता है तो स्पेशल टेस्ट भी चाहिए होते हैं जैसे T2 star MRI। तो ये एक पूरा प्रोग्राम बनाया है एंड अधिकतर सुविधाएं लोगों को अपने डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मिलेंगी, जो अभी तक इतना नहीं मिल रहा था, ताकि फिर वो उनको बहुत दूर दूर नहीं जाना पड़े अपने ट्रीटमेंट के लिए और अपने टेस्टिंग के लिए। एंड जो स्पेशलाइज टेस्ट हैं जैसे T2 star के लिए या बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए, वो फिर तभी उनको मेट्रोज में आना पड़ेगा। सो ये एक बहुत अच्छा प्रोग्राम, बहुत अच्छा कदम है जो गवर्नमेंट ने उठाया है।
शुरुआती जो है वो राज्य के जिला अस्पताल जो है या
वो जरूरी है, ताकि उनके घर के पास ही उनको ब्लड और ये दवाइयां मिलें।
सुधा गुप्ता है हमारे साथ दिल्ली से। हेलो
हेलो
हेलो सुधा जी बोलिए।
मैम मुझे ये पूछना था क्या थैलेसीमिया एंड ल्यूकेमिया एक दूसरे से रिलेटेड है, और एक दूसरा क्वेश्चन है कि क्या इसे नेचुरली भी कभी ट्रीट किया जा सकता है, मतलब लाइक आयुर्वेदिक मेडिसिन देकर या फिर कोई और।
थैलेसीमिया और ल्यूकेमिया बिल्कुल अलग चीज है। ये ल्यूकेमिया जेनेटिक नहीं है, वो एक अक्वायर्ड प्रॉब्लम है, वो एक तरह का ब्लड कैंसर है। थैलेसीमिया ब्लड कैंसर नहीं है, ये एक हीमोलिटिक एनीमिया, ये जेनेटिक है। एंड दोनों चीजों को नेचुरोपैथी से या ऐसे चीजों से नहीं ट्रीटमेंट किया जाता है। आपको प्लीज अपने डॉक्टर के यहाँ जाना चाहिए एंड इसके लिए आज की तारीख में काफी अच्छी ट्रीटमेंट है।
फरीदाबाद से हरीश है फोन लाइन पर। हेलो हरीश जी।
हेलो मैम जी। माय नेम इज हरीश, आई एम फ्रॉम फरीदाबाद।
हम बोलिए।
और मेरे दो बच्चे हैं, एक डॉटर है बड़ी, वो अभी 11th में है, 15 साल की होगी, और दूसरा बेटा है वो तकरीबन 13 साल का, 9th में है। और इन दोनों को ही जो डायग्नोज हुआ है माइनर थैलेसीमिया, थैलेसीमिया ट्रेट जिसको बोलते हैं। तो अब मेरा वरी पॉइंट ये है कि जब ये तो डॉक्टर ने बोला कि भाई आपने भी यही बताया है कि माइनर वाले से नहीं कराना है, बट हमारे हिंदुस्तान में क्या है कि जब शादी करेंगे तो दूसरे का ब्लड टेस्ट हम क्या कराएं, लोग डाउट करने लग जाएंगे उसमें।
ओके सो बिल्कुल चिंता मत करिए, आपके बच्चे बिल्कुल अच्छे हैं एंड आप उनको पढ़ाइए लिखाइए। बस ये ध्यान रखना है कि जब आपकी बेटी की शादी होती है, प्रेग्नेंट होने से पहले आप एक बार उसका टेस्ट तो आपको पता ही है, उस समय उसके हस्बैंड का टेस्ट कराना है। अगर उसका हस्बैंड नॉर्मल है, उसको थैलेसीमिया माइनर नहीं है, तो कुछ नहीं करना। अगर उसका हस्बैंड थैलेसीमिया माइनर है, मतलब अगर आपकी बेटी और उसका हस्बैंड दोनों को ये प्रॉब्लम है, तब जब बच्चा 10 हफ्ते का पेट में होता है तो एक CVS टेस्ट होता है जो किया जा सकता है। एंड सेम चीज जब आपका बेटे की शादी होगी, अगर उसकी वाइफ नॉर्मल है तो कुछ नहीं करना, और अगर उसकी वाइफ भी थैलेसीमिया माइनर है तो सेम चीज करनी है एंड बाकी सब कुछ अच्छा होगा। बहुत बहुत मुबारक।
हाँ, जैसे सेम डॉक्टर तुलका सेठ ने कहा, मैं तो ये कहूंगा कि शादी के पहले ही आपको टेस्ट कराना चाहिए, लाइक HIV हो गया, थैलेसीमिया हो गया, इसके लिए पहले प्री मैरिज टेस्ट कराना चाहिए। ये बहुत जरूरी है, अपने समाज में आपको जागरूकता एजुकेट करना चाहिए लोगों को और इस तरीके की भ्रांतियां। दूसरा, जैसे 9 to 12 weeks में CVS या एमनियोटिक फ्लूड से और 20 weeks में दूसरा टिश्यू से टेस्ट कर सकते हैं या HPLC भी किया जा सकता है।
अगर पेरेंट्स दोनों थैलेसीमिया माइनर या किसी भी तरह का हो थैलेसीमिया, तो उनके बच्चों में वो चीज आनी जरूरी होगी या ऐसा भी केसेस हैं कि बच्चों में वो प्रॉब्लम?
75% चांस है कि कुछ नहीं होगा, बट एक तरह से जुआ है, क्योंकि हर प्रेगनेंसी में 25% रिस्क है कि हो सकता है। एंड अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कई परिवार हैं जिनका एक नहीं दो बच्चे हैं जिनको थैलेसीमिया मेजर है, तो आप सोचिए कि उनको कितनी परेशानी होती है। इसलिए क्योंकि आज की तारीख में प्रीनेटल टेस्टिंग की सुविधाएं हैं, तो उसका उपयोग करें ताकि इस तरह की बहुत बड़ी समस्या आपके परिवार में ना हो।
दिल्ली से श्रोता है राजेंद्र प्रसाद। हेलो राजेंद्र जी।
हेलो।
हाँ जी बोलिए।
मैडम जी नमस्ते।
नमस्ते
मैम, मेरे ना तीन छोटे छोटे प्रश्न हैं। क्या थैलेसीमिया वंशानुगत होता है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, महिलाओं में तिल्ली का बढ़ना और घटना क्या थैलेसीमिया का लक्षण होता है? अंतिम प्रश्न है मैम, क्या हेपेटाइटिस सी थैलेसीमिया की जटिलता को बढ़ा देता है या घटा देता है? धन्यवाद।
पहला तो इन्होंने पूछा वंशानुगत है क्या?
यस, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसमें सिंगल जीन डिफेक्ट होता है हीमोग्लोबिन चेन में, उसके कारण हो जाता है।
दूसरा इनका था कि महिलाओं में जो लीवर
जो तिल्ली बढ़ जाती है, इसके बहुत सारे कारण होते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि थैलेसीमिया के कारण ही तिल्ली बढ़ती है, लाइक क्रोनिक ये हाइपर स्प्लीनिड में हो जाता है और उसके कारण भी तिल्ली बढ़ सकती है। अगर किसी को थैलेसीमिया है और उसका लिवर स्प्लीन बढ़ रहा है तो हाइपर स्प्लीनिड हो जाती है, अगर उसके फीचर्स आते हैं और रिकरेंट इन्फेक्शन होता है और स्पिन का साइज बहुत बड़ा है तो उसके कारण कभी कभी ट्रॉमा हो, चोट लग सकती है, उसमें ब्लीड हो सकती है। तो कभी कभी हम ऐसे केसों में स्प्लीनेक्टोमी तिल्ली को निकालना एडवाइस करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इसको ट्रीट करते हैं। हेपेटाइटिस सी एक्चुअली क्या है, अगर रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन खून देते हैं तो उसमें इन्फेक्शन के चांस रहते हैं। नॉट केवल हेपेटाइटिस सी, बी भी हो सकता है, एचआईवी हो सकता है। तो अगर सी होता है तो उसका इलाज अलग होता है। हम जैसे हमारे साथ दो तीन बच्चे हैं जिनको थैलेसीमिया के साथ हेपेटाइटिस सी है, तो उसका इलाज हम लोग साथ में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट टीम को इन्वॉल्व करते हैं, वो लोग हेपेटाइटिस सी ट्रीट करते हैं और थैलेसीमिया का इलाज साथ साथ चलता रहता है।
जैसे थैलेसीमिया का जो ये ब्लड ट्रांसप्लांट करवाना पड़ता है फ्रीक्वेंटली, तो क्या ये लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम रहती है या कभी कभी कराते हुए जैसे 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद ये होता है कि भाई ठीक हो गया, सेटल है?
नहीं, ये लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम है। एंड शुरू शुरू में जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो कभी कभी एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन 1 महीने तक चलता है, पर जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं तो कई बार 2 हफ्ते 3 हफ्ते में भी उनको ब्लड चढ़ाने की आवश्यकता पड़ सकती है।
इसका इंडिया में, भारत में अभी किस तरह के शोध इसके बारे में जारी हैं, क्योंकि रोगियों की संख्या जहां तक मैं जानती हूं कुछ थोड़े बढ़ी है?
मैं अगर आपको डेटा बताऊं, अभी थैलेसीमिया गवर्नमेंट ऑफ भारत सरकार से जो डेटा आया हुआ है, 10 से 12 हजार प्रतिवर्ष बच्चों को थैलेसीमिया होता है इंडिया में, और टोटल संख्या जो एस्टीमेटेड बताई गई है अराउंड 3 लाख के करीब है बच्चों जो थैलेसीमिया से पीड़ित हैं। और इसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, आजकल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी देने लगे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, जो पढ़ाई में शिक्षा में जो आगे बढ़ना चाहते हैं, और उसके लिए रेगुलर ट्रांसफ्यूजन ही चलता रहता है, लाइफ लॉन्ग चलता रहता है। और स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन क्यूरेटिव ट्रीटमेंट है, उसके बाद बारे में डॉक्टर तुलका सेठ बहुत अच्छा बताएंगी
जी। एक हमारे श्रोता, पहले उनका फोन कॉल ले लेते हैं। नासिक महाराष्ट्र से महेश है हमारे साथ लाइन पर। हेलो महेश जी।
नमस्ते मैडम।
नमस्ते
मैडम, मेरा सवाल है कि थैलेसीमिया माइनर के जो दंपति हैं, उनके बच्चे को प्रेगनेंसी में, अगर उनको प्रेगनेंसी में अगर ये डिटेक्ट होता है कि उनके बच्चे को थैलेसीमिया मेजर है, तो उस समय क्या उनको दवाई देकर ट्रीटमेंट दी जाती है, उनका एबॉर्शन किया जाता है, ये मैं जानना चाह रहा था।
अगर उसमें 10 हफ्ते के टेस्ट में अगर थैलेसीमिया मेजर आता है तो डॉक्टर आपको एडवाइस करेगा कि ये इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाएगा, एंड यूजुअली उस टाइम पे अबॉर्शन या एमटीपी एडवाइजेबल है, बट फैमिली का निर्णय है। एंड हमारे पास कुछ ऐसी भी फैमिलीज हैं जिनको ये पता चला है कि ऐसे बच्चा है एंड वो कंटिन्यू करते हैं प्रेगनेंसी में, ये जानते हुए कि बच्चे को ये बीमारी होगी, बट उसका पेट में जानकारी करने से दवाई का कोई अभी इस समय कोई सोल्यूशन नहीं है। सो ये बस आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है,
बस ये है। बाद में आप बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के लिए जा सकते हैं, और उसके लिए अगर एचएलए मैचिंग अच्छा होता है, और जैसे मैडम ने बताया कोल इंडिया लिमिटेड थैलेसीमिया इंडिया सोसाइटी है, अगर आपकी आय 5 लाख से कम है और एचएलए मैचिंग है तो उसके लिए वो लोग 10 लाख रुपए देते हैं इसके लिए, ट्रांसप्लांटेशन के लिए।
तो ये एचएलए मैचिंग जो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट के समय, इसमें क्या चीज किस तरह से मैचिंग होती है कि कोई रिलेटिव हो?
तो यूजुअली जो आपके भाई बहन होते हैं वो आपके एचएलए जीन्स, उनकी जो क्रोमोसोम 6 पे एचएलए जीन्स होती है जो ट्रांसप्लांट के लिए इम्पोर्टेंट है, वो आपके मैच होंगे क्योंकि आपके मम्मी से और पापा से आपको एचएलए जीन्स मिलती हैं। तो इसलिए जो ब्रदर एंड सिस्टर से जो एचएलए मैच ट्रांसप्लांट होता है वो सबसे सरल और सबसे आसान ट्रांसप्लांट होता है। इसमें ब्लड ग्रुप मैच होने की जरूरत नहीं है, बट ये एचएलए जीन्स हैं ये मैच होने चाहिए तभी ट्रांसप्लांट हो सकता है। अगर आपके परिवार में भाई बहनों में नहीं मिलता है देन अनरिलेटेड रजिस्ट्रीज हैं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले एक सज्जन ने फोन किया था तो उनका दात्री से उनका डोनर मिला था, तो दात्री एक इंडियन रजिस्ट्री है। तो बहुत सारे लोग जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं अगर वो किसी और की मदद करना चाहें तो एक तो आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, दूसरा ये है कि आप दात्री जैसे रजिस्ट्री में अपने को रजिस्टर करके आप अपना थोड़ा सा पेरिफेरल ब्लड स्टेम सेल्स जिसको हम लोग दूसरी भाषा में बोन मैरो बोलते हैं वो भी आप डोनेट कर सकते हैं एंड किसी बच्चे को एक नई जिंदगी दे सकते हैं।
मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम का एक बहुत बड़ा संदेश ये होगा कि हमारे श्रोता जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं वो ब्लड डोनेट करें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में, और बोन मैरो का भी आपने कहा कि उसका भी डोनेशन होता है तो ये एक हमारी नैतिक जिम्मेदारी तो बनती ही है, साथ में हम उन बच्चों को इस बीमारी से लड़ने में थोड़ी सी मदद अपनी तरफ से कर सकते हैं। जी
मेरे हिसाब से प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इस बीमारी को रोकना चाहिए, रोकने के लिए आपको टेस्ट कराना चाहिए, जनता को अवेयरनेस होना चाहिए कि ये बहुत जटिल बीमारी है। सरकार करीब 1.5 करोड़ रुपए एक मरीज के लिए पूरा लाइफ में खर्च करती है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बहुत ज्यादा नहीं होती, तो रोकने के लिए जैसे प्री मैरिज टेस्ट कराना चाहिए और बहुत सारे स्क्रीनिंग कराना चाहिए जिसके द्वारा आप डिटेक्ट कर सके, तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
जी अगले श्रोता है हमारे साथ फरीदाबाद से राजेश। हेलो राजेश जी बोलिए।
यस डॉक्टर नमस्कार।
नमस्कार बोलिए।
मेरा क्वेश्चन ये है कि आप लोगों ने कहा कि ये डिटेक्ट होना चाहिए, डिटेक्शन में तो आपका ब्लड टेस्ट हो गया, तो दूसरा स्क्रीनिंग क्या है, स्क्रीनिंग टेस्ट कौन सा ये बताएं। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि कुछ डॉक्टर्स ये बोलते हैं कि आपको माइनर थैलेसीमिया है तो आप फॉलिक एसिड की एक हफ्ते के अंदर 2 गोलियां पूरी जिंदगी भर खाइए ताकि बच्चों को जो थकान हो जाती है वो उसे मेंटेन रहेगी। ये जो फॉलिक एसिड है इसका साइड इफेक्ट क्या रहेगा बॉडी पे?
अच्छा।
और ये खाने
जो फोलिक एसिड एक विटामिन है जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे पालक वगैरह में होता है, एंड जो भी हीमोलिटिक एनीमिया है जिसमें ब्लड की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होती है, तो हम सभी हीमोलिटिक एनीमियाज में लोगों को बोलते हैं कि आप फोलिक एसिड लीजिए। ये बहुत सेफ मेडिसिन है, इसका अगर आप ओवरडोज भी लेंगे तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है, वो यूरिन में निकल जाएगा, तो ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं, आप आराम से उसको ले सकते हैं।
स्क्रीन टेस्ट
एंड स्क्रीनिंग के लिए बहुत सारे टेस्ट हैं। सो एक तो आप पॉपुलेशन लेवल पे हम लोग करते हैं तो हमारे पास सिंपल टेस्ट हैं जैसे नेस्ट्रॉफ जो बहुत एक इनएक्सपेंसिव टेस्ट है, आप किसी विलेज में भी टेस्ट कर सकते हैं। इससे पता चलता है कि आपको थैलेसीमिया माइनर भी हो सकता है, बट ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, सो डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है, ये और भी चीजों में पॉजिटिव आता है। एंड HPLC एंड बाकी रेड ब्लड सेल इंडेसीज से आप आइडिया लगा सकते हैं। तो सिंपल टेस्ट जो हर एक जगह अवेलेबल है उससे आप पता कर सकते हैं कि आपको थैलेसीमिया है कि नहीं। कुछ कंट्रीज में स्कूलों में कॉलेजेस में भी उन्होंने स्क्रीनिंग किया है आज की तारीख में।
डॉक्टर साहब इसके अलावा ब्लड बैंक में भी कोई निर्देश ऐसे हैं कि
ब्लड बैंक में भी ये टेस्ट होगा? अगर आप ब्लड डोनेट करने जाएंगे तो आपका अपने आप से ये थैलेसीमिया के लिए भी टेस्ट होगा, बिल्कुल होगा। सो कई जगह आप अपना टेस्टिंग करा सकते हैं। आज की तारीख में हम प्रेग्नेंट वुमेन में मैंडेटरी है, बाकी जो है वो ऑप्शनल है।
और आपको अच्छी जगह से ब्लड लेना चाहिए, स्क्रीनिंग करा के। आजकल हेपेटाइटिस बी सी HIV बहुत सारे बच्चों में लक्षण आ जाते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छी जगह से टेस्ट वो ब्लड टेस्ट करा के नेट टेस्ट करना चाहिए इसके लिए, और इसके द्वारा फिर आपको ब्लड सप्लाई।
और मुझे लगता है कि ब्लड डोनेट हम सभी को करना चाहिए, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा बहुत जरूरी है। हम अपने उन सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने कार्यक्रम में हिस्सा लिया।
थैलेसीमिया से बचाव और इसके प्रति जागरूकता विषय पर चर्चा करने और एफएम गोल्ड के स्टूडियो में आने के लिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से डॉक्टर तुलिका सेठ और राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल से डॉक्टर आलोक हिमल, आप दोनों का हार्दिक आभार।
धन्यवाद।
ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा हम जरूर जानना चाहेंगे। हमारे को आप ईमेल भी कर सकते हैं, पता है airnsdtalks@gmail.com। और कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहें तो हमारी वेबसाइट देखें newsonair.nic.in। अब ये कार्यक्रम यही समाप्त होता है। चंद्रिका जोशी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।